كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك سے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے دوسری قوموں کے ساتھ اس نے ڈیل کیا اسی طرح ان کے ساتھ ڈیل کیا جیسے پچھلی کے ساتھ کیا تھا. تو کذلك یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس طرح ہی ان کا حال تھا, یہ ان کا بھی وہی حال تھا, ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ ایسے رہتے تھے. وقد احاطنا بما لدیہ خبرا, اور تحقیق گھیر رکھا ہم نے جو اس کے پاس تھا خبر میں سے. مطلب یعنی ذوالقرنین اتنا بڑا بادشاہ تھا مگر اس کو بھی نہیں پتا تھا, اس کو بھی نہیں خبر تھی کہ یہاں پہ ایسی بھی کوئی قوم رہتی ہے, ایسے بھی لوگ رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے. احاطنا, احاطہ کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف سے گھیرنا, یعنی ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں پتا تھا. ہم تو کبھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو صرف ایک سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں, اس کی ایک اس کی سمت دیکھ سکتے ہیں, ایک ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں نا, ہم پوری طرح چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے. ہم اسی لیے تو غلطی کھاتے ہیں کیونکہ ہم کچھ سمجھتے ہیں وہ بعد میں کچھ اور نکلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کے خبر پورا احاطہ ہے اس کا, صرف خبر نہیں ہے پورا احاطہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فلیٹ لینڈ تھی, بالکل فلیٹ تھی جہاں پہ کچھ نہیں تھا, ورنہ پہاڑ ہوتے تو ان کے نیچے چلے جاتے, کوئی اور شیلٹر ہوتا تو پھر ایکسپوز نہ ہوتے سورج سے. تو ایسی اتنی دور کی جگہ گیا, کیونکہ ایک جگہ وہ وہاں پہ گیا تھا, پھر اب دوسری فار ایسٹ میں چلا گیا, تو لمبے لمبے اس کا مطلب ہے کہ سفر کر رہا ہے. ثم اتبع سببا, پھر وہ فار ایسٹ سے اب پھر اس نے سبب اختیار کیا, پھر ایک مہم اختیار کی. ابھی تک کیا پتا چلا آپ کو اس بادشاہ کے بارے میں؟ اس میں عدل ہے, اس میں انصاف ہے, یہ ایمان اور صالح عمل کو ویلیو کرتا ہے, اس کا مطلب خود بھی ایمان والا اور صالح عمل کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے اوپر ایمان رکھتا ہے, اور محنتی ہے, اور اختیار رکھتے ہوئے بھی ظلم نہیں کر رہا کہیں, اور آرام سے بیٹھتا نہیں ہے جیسے کہ بادشاہوں کا طریقہ ہو جاتا ہے کہ وہ بس وہ بیٹھتے ہیں اور بس اس کے بعد آرام ہی کرتے ہیں, پھر اس کے تو کچھ کرتے تو نہیں ہے. پھر تو یہ آدمی ایسا تھا. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین, دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان. اب یہاں پہ جبل نہیں آیا کہ صرف پہاڑ ہے, پر پہاڑی سلسلے جیسے ماؤنٹین رینجز ہوتی ہیں نا, وہ دور تک ماؤنٹین رینج, کیونکہ آڑ کا معنی ہے نا سد کا, تو یعنی ایسی آڑ کے بالکل بلاک کر دے. آپ دیکھیں سد اس کو کہیں گے کہ مثلا پہاڑ ہے نا, ایک پہاڑ ہے اگر, تو اگر پانی اسے ٹکرائے گا تو سائڈوں سے چلا جائے گا, لیکن جب سد ہوتی ہے نا تو وہ اتنی چوڑی ہے کہ پانی اس کے سائڈوں سے بھی نہیں جا سکتا. میں نے آپ کو جسٹ ڈفرنس بتانے کے لیے. وجد من دونہما قوماً, اس نے پایا اس ان کے علاوہ ایک قوم کو, یعنی ان کے علاوہ سے مطلب ہے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان, من دونہما ان دونوں کے درمیان میں, یعنی ایک قوم. وہ کیسی قوم تھی؟ لا یکادون یفقہون قولا, نہ قریب تھے کہ سمجھتے بات کو, یعنی آلموسٹ نہ سمجھ سکتے تھے ان کی بات. آلموسٹ یہ لا یکادون کا مطلب یہ, یعنی آپ تھوڑی بہت بات ان کی سمجھ آتی تھی لیکن زیادہ تر سمجھ نہیں آتی تھی. یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل ہی نہیں سمجھ آتی تھی, قریب تھا کہ نہ سمجھ آئے ان کی بات. آپ دیکھیں نا ڈفرینٹ ڈفرینٹ قوموں کے پاس وہ گیا. اب یہ ہمیں یہ بھولنا نہیں ہے کہ ہمیں پہلے بتایا گیا کہ ان اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتائیں گے جو ہمارے لیے ذکر ہیں, جس میں ہمارے لیے سبق ہے. تو وہ باتوں کے اندر آپ دیکھیں پہلی قوم سے بھی آپ کچھ سیکھتے ہیں, دوسری سے بھی سیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی قومیں بھی دنیا میں ہیں جن کے خبر سوائے اللہ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے, جو اتنے مطلب پرمیٹیو زمانے میں, کیونکہ پرانے زمانوں سے لوگوں تعمیر بھی کرتے تھے, کپڑے بھی پہنتے تھے, تو کیسی بھی قومیں ہیں اس زمین کے اوپر. پھر اب ایک ڈفرینٹ ہی قوم آئی, اس کا مطلب یہ بھی کوئی دنیا سے دور ہی چیز تھی, सिविलाइजेशन से कटे हुए थे, इसीलिए तो उनकी जुबान ना कोई जानता था ना वो किसी की जुबान समझ सकते थे, दोनों तरफ से ही था। हालांकि जुल्कर्नैन के साथ ट्रांसलेटर या जो भी होंगे, या वो खुद इतनी जुबानें जानता था, मगर अब किसी को भी इनकी जुबान नहीं समझ आ रही, ये हमें पता चलता है। ठीक है, और इतनी पता नहीं कहाँ कहीं दूर ही रहते होंगे जो सिविलाइजेशन से कटे हुए हों, क्योंकि वरना देखिए किसी भी कौम में से कोई एक बाहर चला जाता है, कोई पढ़ के आता है, वो कहीं कोई जुबान सीख के आ जाता है, तो उनमें कोई तो होता है। लेकिन ये इसका मतलब कोई भी इनमें जुबान को जानने वाला नहीं था। पालू, उन्होंने कहा, या ज़ुल्क़रनैन ऐ ज़ुल्क़रनैन, इन याजूज व माजूज मुफसिदूना फिल अर्ध, बेशक याजूज और माजूज फसाद करने वाले हैं जमीन में। अब उन्होंने कैसे कहा, फिर इनको कैसे समझ आई, अब आप सोचेंगे। देखिए बात यह है कि जो एक जुबान होती है उसके अलावा भी एक साइन लैंग्वेज जिसको आप कह लें या इशारों की जुबान कह दें, कि उसमें भी इंसान दूसरे को कुछ समझा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज जो हैं मुफसिदूना फिल अर्ध, युफसिदूना नहीं कहा मुफसिदूना कहा, फर्क क्या दोनों में, युफसिदूना होता तो क्या होता, वो एक फेल होता, वर्ब होता, और वर्ब के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी नाउन में होती, ये नाउन है मुफसिदूना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं वो खाती है और खाने वाली, तो खाने वाली से आप क्या समझेंगे, और वो खाती है, वो खाती है तो शायद एक दफा उसने खाया होगा, लेकिन खाने वाली है, या कुछ और चीज ले लें, चलो ये तो मैंने एक मिसाल आपको दी ना, उसने मदद की या वो मदद करने वाली है, वो ऐसी औरत है जो मदद करने वाली है, उसका नाम ही ये है। ठीक है, तो अब दोनों में क्या फर्क हुआ, एक के अंदर यानी आपको ये पता चलेगा कि यानी ये उसका काम ही है, वो ऐसे ही करती रहती है मुसलसल, कि उसका नाम ही ये पड़ गया। ठीक है, इसी तरह मुफसिद की जमा मुफसिदून, वो हमेशा फसाद करते रहती है, उनका काम ही है फसाद करना, वो एक फसादी कौम है जिसको आप कहते हैं ना, उसने फसाद किया, हाँ अब इससे समझ ले, उसने फसाद किया या वो फसादी है, समझ आती है ना दोनों में फर्क, तो वो फसादी का मतलब है कि कोई लोग होते हैं जो फसाद ही करने का उनको शौक होता है, और फसाद में भी क्या आ जाता है, तबाही करना, चोरी डाके रेप करना, और इस तरह ये सारे फसाद किए हैं जो जराइम की, ये बड़ी बड़ी जो किस्में हैं ये फसाद है जमीन पे, कत्लो गारत करना, लूट मार करना, तो ये याजूज और माजूज मुफसिदूना फिर अर्थ, वो जमीन में फसाद करने वाले, इनके बारे में अभी डिटेल में देखते हैं कौन थे याजूज और माजूज, लेकिन पहले इस किस्से को देख लेते हैं। फहल नजअलु लका खर्जन, तो क्या हम बनाएं आपके लिए कोई खराज, यानी कुछ आपके लिए कुछ सैलरी आपको के का इंतजाम करें, कुछ आपको पेमेंट का इंतजाम करें, अला अंतजाला बैना ना व बैना हम सद्दा, कि आप बना दें हमारे और उनके दरमियान एक रोक। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कि देखिए जो एक भला इंसान होता है ना, जैसे आप देखिए यूसुफ अलैहि सलाम को जेल वालों ने पहचान लिया था, ये एक मुत्तकी इंसान है, एक अच्छा इंसान है, तो आपको फिर बताने की बार बार जरूरत नहीं होती, मैं तो इतनी नमाजें पढ़ती हूँ, मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, मैं तो इतनी आलिमा हूँ, मैं तो, फिर आपकी नेकी टपकती है आपके चेहरे से, नेकी का नूर चेहरे पे भी आ जाता है, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, और आप देखते हैं कि बाज लोगों के चेहरे के ऊपर ऐसा होता है, आपको देखते ही लगता है कि ये कोई भला इंसान ही है। तो जब वो उनके पास गए हैं आप ज़ुल्क़रनैन को, उनको तबलीग तो करनी नहीं, समझ तो आती नहीं थी उनको बात, उनको कैसे पता चल गया ये, देखिए एक तो मैसिव आर्मी देखी उन्होंने, इतनी बड़ी आर्मी है, अब आर्मी वाले तो जुल्म वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये कोई अच्छा ही इंसान है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की ज़ुल्क़रनैन से कि हम आपके लिए कुछ पेमेंट तय कर लेते हैं आपके साथ, और आप प्लीज हमारे साथ ये काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सता रखा। वो लोग क्या करते थे, याजूज और माजूज है ना, दो कौमी है, एक कौम का नाम है याजूज और एक का नाम है माजूज। ठीक है, ये जो कौमे हैं, ये दो आदमी नहीं है, सिर्फ दो कौमे हैं, तो ये हमें इतना सता रही है, इतना फसाद करती है, ये आते हैं हमारे वहां, इतनी तबाही करते हैं, कत्लो वारत करते हैं, फसलें उजाड़ देते हैं, सब खा पी लेते हैं, लूट मार करते हैं, तबाही करते हैं और चले जाते हैं, तो आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। आप देखें, वैसे जब आप किसी को कोई जॉब की ऑफर करते हैं ना, तो पहले क्या बताते हैं? सैलरी नहीं कभी पहले बताते, आप पहले ये बताते हैं आपने ये काम करना है, फिर आप कहते हैं इतनी आप सैलरी देंगे उसको। ठीक है, यहां पे वो पेमेंट की बात पहले कर रहे हैं और काम की बाद में कर रहे हैं। क्यों? इससे पता चलता है कि वो इतने डेस्परेट हैं कि आप हमें बना दें, हम आपको देने को तैयार हैं इतने, आप हमारा ये सिर्फ काम करते हैं। और ये भी पता चलता है कि इसका मतलब याजूज माजूज भी इस कौम को जानते थे और ये भी उनको अच्छी तरह जानते थे। ठीक है, और इसका मतलब है कि इनके पास इतनी थे कि वो कुछ पेमेंट कर सके। अब देखें आप, ये कोई आसान काम था भला, कि वो क्या कह रहे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं कह रहे, कोई घर की दीवार तो नहीं बनानी, किधर क्या कह रहे हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं उनके बीच के अंदर ऐसे दीवार खड़ी कर दें कि वो आ ना सके यहाँ पे, तो क्या मतलब होगा कि इतनी ऊंची दीवार जो पहाड़ों के ऊपर तक चली जाए, इतनी उसकी हाइट हो जितने पहाड़ हैं, और जितनी उसकी विड्थ हो जितनी दोनों माउंटेन रेंजेस के दरमियान की जगह जो गैप है वो सारा फिल हो जाए, तो ये आसान है कोई? आज भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर कितनी क्रेन्स चाहिए, कितनी मैन पावर, लेबर कितनी चाहिए, कितना करोड़ों अरबों रुपया चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि जुल्करनैन क्या कहता है। अब आपको कोई ऐसा काम कह दे कि भाई हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, तो हम कहेंगे अब हमें क्या, अच्छा अच्छा करेंगे तुम्हारा कोई काम, वादे करके और फिर चले जाएंगे, और फिर वो यही हुक्मरानों का या इनका ज्यादातर तो यही काम होता है, हाँ हम आपकी मदद करेंगे, आपकी इमदाद जरूर होगी और ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे गायब हुए कि बस तस्वीरें ही बनवा ली और उसके बाद बस कुछ पता नहीं है इमदाद का। वो बेचारे देखते ही रह जाते हैं कोई मदद को आएगा जिसने वादे किए, वोट लेते वक्त कितने वादे होते, वो कह रहे हैं हमारा मसला ही हल कर दें, कितने लोग मसाइल के हल के लिए हुक्मरानों से कहते हैं जो उनके अपने हुक्मरान होते हैं, ये तो उनका हुक्मरान नहीं है, ये तो अब एक जा रहा है, एक एक्सपीडिशन पे निकला है, वो यहां पहुंचा है, अब वो क्या कहेगा, भाई मुझे क्या, भाई याजूज माजूज तुम्हें तंग करते हैं, मेरे मुझे इससे क्या, मैं तो जाऊं अपने रास्ते, ये नहीं कहता। और वो ये भी नहीं कहता कि अच्छा भाई मैं तो इतने मिलियन डॉलर लूंगा तब करूंगा, वो कहता है क़ाल मा मक्कनी फी रब्बी सुभान अल्लाह, कहता है जो मुझे अल्लाह ने कुदरत दी है ना मेरे रब ने, वो बेहतर है मेरे लिए, यानी मुझे नहीं इन पैसों की जरूरत, मेरे मुझे जो मेरे रब ने दे दी है वो मेरे लिए बेहतर है, वो यानी मेरे लिए काफी है, बस तुम ये करो फाईनूनी, तुम मदद करो मेरी सारे मिलके, भी कुव्वत इंसान कुव्वत के यानी मैन पावर अफरादी कुव्वत के साथ, अज अल बईना को व बईना हूं, मैं बनाऊंगा तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान क्या सद्दा, नहीं रदमा, अल्लाह अकबर, सद्दा तो तुमने पूछी है ना, लेकिन सद जो है वो इतनी काफी नहीं होगी, जिस तरह की कौम का उन्होंने बताया कि वो ऐसे फसादी हैं, उनके लिए सद नहीं, उनके लिए रदम बना के दूंगा तुम्हें, यानी जितनी उन्होंने आस्क की थी ना उससे भी बढ़ के चीज, उससे भी बेहतर चीज, क्या जबरदस्त आदमी था वो, ऐसा भी कोई आपने बादशाह देखा है अभी दुनिया में, कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ऐसी कोई हुकूमतें देखी हैं कि कोई गरीब है, कोई गरीब मुल्क है, वो कहता है कि हमें कुछ दे दो, हमें कोई कर्जा दे दो, तो फिर वो क्या करते हैं, आज क्या होता है, या कोई वो अपने लिए रिसोर्सेस मानते हैं हमारा मुल्क चल जाए तो क्या करते हैं, उनको दे देते हैं कर्जे, फिर उसके बाद इतना बड़ा सूद लगा देते हैं कि वो मुल्क देते देते उसकी कमर टूट जाए, या ऐसी शराइत रख देते हैं कि वो बस कौम जो है ना बेचारी पिस पिस के खत्म हो जाए, तो ना कोई शराइत है यहाँ पे, उसने कहा बस आप लोग मेरे साथ हेल्प करोगे ये बस बात है, बाकी मुझे आपसे कुछ पेमेंट नहीं लेनी, कौन मुफ्त काम करता है, आज बड़े बड़े मुल्क देख लें जो सुपर पावर्स कहलाते हैं, उनमें से कौन है जो जाके गरीब मुल्कों की मदद ऐसे कर रहा हो कि जी जी हम आपके कोई डैम बना देते हैं, हम आपके कोई मदद कर देते हैं, हम आपकी कोई आपके ऊपर कोई कर्जा है वो हम दे देते हैं, आप पिस रहे हैं, बगैर मुआवजे के तो कोई कुछ भी नहीं करता, कर्जे दे देंगे वैसे नहीं करेंगे, और बगैर किसी किस्म की लालच के कोई भी नहीं कुछ करता, मगर इसने बगैर मुआवजे की किया। इससे पहले भी आपने कोई चीज देखी है इस सूरत के अंदर कि बगैर मुआवजे के कोई काम किसी ने किसी का किया? याद करें जी, मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम के किस्से में आपने देखा कि खिजर अलैहिस्सलाम ने दीवार बनाई बगैर मुआवजे के। उन्होंने तो नहीं सोचा मुझे आगे कोई दे उजरत, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा ना तो आपने इनसे कुछ ले लेना था, उन्होंने नहीं कहा। तो यहाँ पे जुल्करनैन को भी देखे, इससे पता चलता है जो बंदा मोमिन होता है ना, जब वो किसी के ऊपर जुल्म होता देखता है तो ये नहीं लालच में, नहीं पहले मुझे इतना दोगे तो फिर मैं करूंगी, मुझे इसमें क्या मिलेगा, मेरा इसमें कितना कमीशन होगा, मेरी इसमें क्या, मुझे क्या फायदा इसमें में मिलेगा, अब इसको क्या फायदा मिलना था, इसे तो चले जाना था, उसने तो जाना था, उसको क्या था इस चीज से, खुद सोचे। लेकिन आप देखते हैं कि कितने डिफरेंट होते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले होते हैं, जो इंसाफ पसंद बादशाह होते हैं, जो इंसाफ पसंद हुक्मरान होते हैं, जिनका अल्लाह से एक कनेक्शन होता है, कितने डिफरेंट होते हैं। आज गैर मुस्लिमों तो छोड़ ही दें आप, अपने मुसलमानों हुक्मरानों में कौन आपको नजर आता है? मुसलमानों में भी तो बड़े बड़े दौलतमंद मुल्क हैं, कौन से आपको नजर आते हैं जो बगैर किसी लालच के, बगैर कोई फायदा अपना देखे हुए, बगैर किसी बदले की उम्मीद के काम करके दिखाएं जरा। अब जुल्करनैन जानता था उसके पास बहुत बड़ी फौज है, तो वो क्यों नहीं कहता कि भाई मेरी फौज ही कर देगी? इसलिए कि वो चाह रहा है कि तुम लोग भी काम करो, और इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि ये नहीं है कि बस सब बैठो और आप जी बैठ के देखें, आप तो गरीब लोग हैं आप बैठ के देखें, नहीं, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर रहा है कि नहीं आपको खड़ा होना चाहिए, आप अपनी मदद, आपके तहत आप मेरे साथ हेल्प करें इस चीज के अंदर। वो पता है ना अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने लिए कुछ ना करे, बस यही देखते रहना कि हाय कोई आके हमारा कर दे, हम तो कुछ ना करें, हम तो बस बैठ के देखते रहे, ये नहीं। तो उसने कहा आप लोग मेरी हेल्प करेंगे इसमें, और ये भी पता चलता है कि उसके पास नॉलेज कितना था, इल्म कितना था। इल्म था तो तभी उसने सोचा ना कि सद नहीं काफी होगी, रदम चाहिए। अब हमारे तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, हमारा हाल ये है कि वो बनाने को कुछ कहेंगे ना अगर कंस्ट्रक्शन का, ऐसे पुल, ऐसी सड़कें और ऐसी बिल्डिंग्स बना के देंगे जिसमें इतना नाकिस मटेरियल होगा अगले दिन ही गिर जाएंगे। बेचारे कहीं देखा भी है, बेचारे लोग जा रहे होते हैं पुल के ऊपर, उसके ऊपर गाड़ियां गिर रही, वो पुल ही ढह गया, सड़कें एक बारिश हुई वो गिर खत्म हो गए, इमारतें हैं तो वो गिरी पड़ी, उनको क्या, वो तो अपना बना के पैसे लिए और चले गए, ठीक है। और ये भी ऐसी कोई साध, कोई छोटी मोटी ऐसी बना के जान छुड़ा चला जाता हूं, उसके बाद मुझे क्या, पीछे से मरते खपते रहे और इनसे पैसे भी ले लो और डबल ट्रिपल कीमत करके, लोगों को इस वक्त तो इनकी जरूरत है। जब हम देखते हैं किसी की जरूरत होती है, कोई बेचारा पिस रहा है, कोई आके हमें बड़ा कह रहा है मेरी मदद कर दो, तो उस वक्त ही हम कहते हैं बस ये टाइम है कि बना लो जितने पैसे बनाने। जब हम देखते हैं मिसाल के तौर पर किसी बेचारे परेशान हाल है, उसको अपनी कोई चीज बेचनी पड़ जाती है, अल्लाह ताला माफ करे इस चीज से कि ये भी गुनाह के उसके अंदर आ जाता है कि उसको अपनी चीज को बेचनी पड़ रही है, तो उसकी मजबूरी से फायदा उठा के उसको इतनी कम कीमत दी जाए, बस अपना वो घर बेच रहा है या वो अपनी गाड़ी बेच रहा है, वो किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया है, आपको पता है कि ये मुसीबत के अंदर है, अब ये इसको तो बेचनी ही बेचनी है, आप इसको कोई जो भी उसकी मुश्किल है, तो आप उसकी इतनी लो कीमत लगाएं ताकि मैं फायदा उठा लूं। इसकी गर्दन आई भी है इस वक्त एक उसके नीचे मुसीबत में, तो मैं इसी मुसीबत से, इसकी परेशानी से फायदा उठाऊं, ये भी बहुत ही बुरी बात है। इसके बारे में कोई हदीस भी है, मेरे सामने नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, ये वक्त था कि जुलकरनैन उनसे खराज भी लेता, उनको कहता तुम काम करो, ठीक है मेरी फौज आपके साथ काम करेगी, और छोटा मोटा बना के, कमजोर सी सद बना के, और अपना रास्ता भी लेता। ठीक है ना, यही हम लोगों के तरीके ना, मुसलमान तो ऐसा ही करते हैं ना, क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें माफ कर दे, फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर अजाब क्यों आते हैं। तो उसने उन उनसे ये कहा, और ये भी पता चलता है वो कितना खैरख्वाह बादशाह था, उसमें खुदा खौफी कितनी थी, क्योंकि जिसमें खुदा खौफी हो ना बस वही ये कर सकता है, और जिसमें इंसानियत की खैरख्वाही हो कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है मैंने इनकी मदद करनी है, उसका कोई फर्ज तो नहीं बनता था। हम नेकी करने लगते हैं तो पहले क्या पूछते, मैं ही करूं क्या, कोई और क्यों नहीं कर लेता, किसी और को कह दें, खुद क्यों नहीं कर लेते, वो ये भी कह सकता ना, खुद क्यों नहीं कर लेते तुम, मैं तुम्हें बता के चला जाता हूँ, खुद करो ना, मुझे क्यों डाल रहे हो उसमें, फौरन कहते हैं। तो उसने कहा आतूनी जुबर अल हदीद, मेरे पास लेकर आओ लोहे के टुकड़े। अच्छा, अब ये आयत जो है ना, ये इंजीनियरिंग की आयत है कुरान में, सुभान अल्लाह, इतनी जबरदस्त बात है इसके अंदर इंजीनियरिंग के हवाले से, और इसे ईमान भी बढ़ता है इंसान का, कि हदीद के ब्लॉक्स लेकर आओ, इसका मतलब है उनकी जमीन में होगा लोहा, वहां पे काफी होगा, तो जो कह रहा है कि इतने ब्लॉक्स लेकर आओ, इतने ज्यादा लोहा तो आसान थोड़ी होता है, हत्ता सावा बैन सदफैन, यहां तक कि वो बराबर कर दिया उसने उसको, इन इस लोहे की जो ब्लॉक्स थे इनको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रख के दोनों किनारों के बराबर कर दिया। कौन से दोनों किनारे, वो जो पहाड़ों के दोनों किनारे थे ना उनके बराबर कर दिया, यानी अब वो इतनी ऊंची तक ऊपर ले गया। अच्छा, अब सारा गैप फिल हो गया, लेकिन ये तो मजबूत तो नहीं है ना, तो गिर जाएंगे, तो अब इनको आप देखते हैं कि हम भी जब ईंटे रखते हैं तो उनके बीच में सीमेंट लगाते हैं ताकि वो उनको जोड़ दे, तो उसने लोहे के ये टुकड़े रखे, अब इनको जोड़ने के लिए क्या है, कौलन फुखू, उसने कहा फूंक मारो इसके अंदर, तो पता चलता है कि यानी जो वो नहीं होता, जो आग दहकाने का जो आला होता है, जो ब्लोअर होता है, उसके अंदर फूंको ताकि वो आग भड़के वहां पे। तो अब आग जब इतनी भड़क गई, इतनी यानी वो कितनी सुभान अल्लाह बड़ी आग लगाई होगी कि वो आग ऊपर तक जा रही है, और हत्ता के इजा जालहु नारन, जब कर दिया उसको आग, किसको, इस लोहे को, ये लोहा जो है ना वो आग बन गया, यानी आग की तरह सुर्ख हो गया, कहते हैं ना हम आग हो गया, ये लोग वो सलाखें भी अगर आग के अंदर रखे तो कैसे रेड हॉट हो जाती हैं, तो फिर वो पिघलना शुरू हो गया, जो वो पिघला ना तो उसके जो बीच में गैप्स थे वो सारे फिल हो गए, वो जो जो आपको मैं बता रही हूँ जहां पे आप सीमेंट लगाते हैं, तो वो जो लोहे की चादरें हैं या ब्लॉक्स हैं उनके दरमियान की जो जगह है, सुराख हैं, गैप्स हैं, वो सारे फिल हो गए उस पिघले हुए लोहे से। अब उसने कहा काला आतूनी, दो मुझको, उफरेह मैं उंडेलू अलैहि खतरा, इसके ऊपर तांबा पिघला व तांबा, इससे आपको क्या पता चला, इतनी बात से बहुत सारी चीजें सोचने की हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं आप लोगों से पूछूं, आप मेरे सामने अगर बैठे हो कि आप बताएं कि इससे आपको क्या पता चला, आतूनी से क्या पता चला, और कितरा से क्या पता चला, ओफ्रेग से क्या पता चला, आतुनी से पता चला कि देखें वो खुद भी काम कर रहा था, इट वॉज नॉट लाइक कि बस बस लोगों को कह रहा तुम ये करते जाओ तुम वो करते जाओ, जैसे हुक्म चलाते जाना बस सारा वक्त। लेसन्स में देखेंगे ये भी हमने सीखा कि वो कैसा लीडर था जो खुद आगे बढ़ के काम करता था। आपने देख जंगे आजाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नॉट ओनली जंगे आजाब, मस्जिद नबी की कंस्ट्रक्शन है, ये जहां पे भी आप देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ मिलके काम कर रहे हैं, सहाबा को करने देते थे आपको काम, वो तो कहते थे आप बैठे हम करेंगे, तो लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ के काम में हिस्सा लेते थे तो आप एक नमूना दे रहे हैं कि जो लीडर है जो बड़ा है वो आगे बढ़ के खुद भी हिस्सा ले, खुद भी अपने हाथ से काम करे, वो सिर्फ हुक्म चलाने वाला ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पे भी हमें ये नहीं नजर आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हो और सहाबा काम कर रहे हैं, हालांकि वो उनको काम करने में कुछ नहीं था, वो तो कहते थे आप बैठे, वो तो नहीं चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के काम करें, लेकिन आप फरमाते थे मुझे भी उतनी ही अजर की जरूरत है जितनी तुम्हें, खुद आगे बढ़ के करना। लेकिन आज के हम देख लें लीडरशिप हमारी कहीं पे भी देख लें, तो वो बस बॉस मान के बैठ जाते और बस उसके बाद आप बस हुक्म चलाना, ये अच्छा लगता है। काम तो दूसरे करें, हम क्यों काम करें? काम करने को तो अपने लिए आर समझते हैं, हम क्यों करें? ये करें ना, वो कह रहा है आ तू नहीं मुझे दो, मैं उंडेलता हूं इस पे मोल्टन कॉपर। सुभान अल्लाह। अच्छा कितरा से आपको क्या समझ आई? कॉपर आपने कभी देखा? कॉपर की फिनिश कितनी स्मूथ होती है ना, तो जब उस दीवार के ऊपर, लोहे की दीवार के ऊपर कॉपर डाला जाएगा, तो नंबर वन ये कि वो और मजबूत हो गई, नंबर टू ये कि वो स्मूथ हो गई बिल्कुल, यानी अब इसके ऊपर कोई चढ़ना चाहेगा तो चढ़ नहीं सकता क्योंकि वो स्लिपरी होगी, जिसको आप कहते हैं ग्लेज्ड, ग्लेज्ड हो गई। ठीक है, अब ग्लेज्ड चीज के ऊपर चढ़ना नामुमकिन है, कैसे चढ़ेंगे, फिसल जाएंगे। फमस्ताउ अयधारू मस्तताउ लहू नकबा, तो नहीं इस्तात हुई कि वो चढ़ सके उस पे और ना ही वो ताकत रखते थे कि उसमें नकब लगा सके। अब मस्ताऊ और तताऊ के अंदर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको बताया इनके मीनिंग आप बिल्कुल सेम लिख सकते हैं। तो फिर ये ता एक एडिशन हुआ, एक लेटर सिर्फ और ज्यादा आया, और जब एक लेटर भी ज्यादा आ जाए तो उसमें कुछ शिद्दत आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट। आप देखें कि एक दीवार है, उसमें सुराख करना ज्यादा मुश्किल होता है या उसके ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जाना मुश्किल होता है? आप देखें कोई भी कंक्रीट की दीवार देख लें, किस क्या चीज ज्यादा मुश्किल होती है? उसमें सुराख करना ज्यादा मुश्किल है ना, तो वो उसके लिए आया मस्तताओ और चढ़ने के लिए आया मस्ताओ। ब्यूटी ऑफ कुरान ना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जरा आपको बता रही हूँ सो आप इंजॉय कर सकें इसकी ब्यूटी को, के देखें एक भी जरा सा डिफरेंट आ जाए तो क्या। लेकिन मैंने वैसे आपको बताया कि मीनिंग में कोई फर्क नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इज नॉट को आप इजंट कह दें, वी आर को वी आर कह दें, यू आर को यू आर कह दें, तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसको जरा शॉर्ट किया गया। मगर ये इसका एक आपको समझ आई, और दूसरी ये कि देखें अगर रेपिटिशन होती ना मस्तताऊ अयजहू मस्तताऊ लहू नकबा, तो ऑलवेज रेपिटिशन इंसान को कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जब बोलता है तो उस वर्ड को डिफरेंट करके बोलता है, कोई और वर्ड लेकर आता है, तो वो ब्यूटी होती है। अच्छा जब ये सारा काम मुकम्मल हो गया, सुभान अल्लाह, ये मैं आपको बात बता रही थी, तो उसने क्या कहा? देखो मैंने कितनी जबरदस्त दीवार बनाई है, देखो मेरा कारनामा, ये तो तुम्हें याद रहेगा, ये तो यादगार हो, और यहाँ पे अपने नाम की तख्ती भी लगा दे। और उस जमाने में तो कोई वो नहीं होती थी, वरना कोई अखबारों में भी आ जाए, कोई टीवी पे भी आए, ऐसा कुछ भी नहीं। काला हादा रहमतुम मिन रब्बी, इतना बड़ा कारनामा है कि आज तक सोचे वो दीवार खड़ी हुई है और वाकई ना उसके ऊपर कोई चढ़ सका ना उसमें कोई सुराख कर सका, लेकिन उसने इतने बड़े कारनामे को भी करके कोई शेखियां नहीं है, कोई बड़ाइयां नहीं है, कोई सेल्फ प्रेज नहीं है, इंसान अपनी तारीफें करता नहीं हटता ना, फिर हाजा रहमत मेरे रब, मेरे रब की रहमत है, रब ने कराया है, रब की रहमत है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सका और ये दीवार बना सका। सुभान अल्लाह। जॉब जब स्टार्ट की तो क्या कहा, नोट करें, जॉब ये देखें आप इसके अंदर, जब जॉब स्टार्ट किया तो मा मक्कनी फी रब्बी खैरुन, और जब जॉब एंड किया तो क्या कहा, हाजा रहमतुम मिन रब्बी, शुरू में भी अल्लाह का नाम, आखिर में भी अल्लाह का नाम, ना करके कोई बड़ाई और ना शुरू करने से पहले अपने कोई कारनामों के ऊपर फखर। ठीक है, हमेशा आजजी, हमेशा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक, हमेशा अपने काम की निस्बत अल्लाह की तरफ लौटाना, और ये सिर्फ ऐसे ही बात नहीं है, वाकई जो भी काम इंसान करता है वो सिर्फ अल्लाह ही की तौफीक से हो सकता है। यकीन जाने आप ना इसको आजमा के देखिएगा, कहने से बात नहीं, आप आजमा के देख लेना कभी कोई भी काम जो आप सोचते हैं कि मेरे दाएं हाथ का काम है, ये तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये तो मैं चुटकियों में कर लेती हूँ, ये तो देखना अभी मैं 2 मिनट में लगा के करूंगी, आप देखना कि कभी वो भी वक्त आता है कि वो काम करना तो क्या, आपका बिस्तर से नीचे पैर रखना भी मुश्किल होता है। कोई बीमार हो जाता है या वो कोई रिसोर्सेज ही नहीं रहते उस काम को करने के, या वो हालात कैसे से कैसे हो जाते हैं और इंसान नहीं कर पाता उसी को जिसको वो कहता था कि मैं तो बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। तो ये वाकई अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन ये रियलाइज बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उसने एक बड़ी आजजी का इजहार करते हुए, क्योंकि बड़े आजजी दिखाने के लिए, बड़े अपने आप को नेक बनाने के लिए ये कह दिया, बस ये जी अल्लाह की रहमत है, आजा मिन फदली रब्बी, बस ये है। और फिर उसके बाद तख्ती तो ये लगा दी, आजा मिन फदली रब्बी घर के बाहर, लेकिन जब बात करें तो फिर तकब्बुर है, फिर तो अल्लाह का फजल नहीं नजर आता। ये नहीं है, वाकई जब भी इंसान कोई भी काम करता है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत, उसका फजल होता है उसके ऊपर कि वो उसको कर पाया, वरना तो एक सांस लेना भी हमारी अपनी ताकत नहीं है तो काम कारनामे करना कौन सी का ताकत होगी। तो मेड बाय सो एंड सो, इसकी तो तख्ती लग सकती थी सीन ना, मेड बाय ज़ुल्करनैन, इस पे तो लिखा जा सकता था ना, लेकिन नहीं। लेकिन जो लोग बड़े काम करते हैं ना और उनके अंदर इखलास होता है, उनके कामों को अल्लाह जिंदा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके कामों को वो कदरदानी देता है कि अब वो अगर खुद भी कोई इंसान कितनी भी कोशिश करके अपने नाम को जिंदा रखने की कोशिश करे वो नहीं हो सकता, इस तरह से अल्लाह ताला उसका, देखिए हम तो कुरान के अंदर आ गया, और क्या इससे बड़ी बात हो सकती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को बिल्ड किया तो उसके बाद उनकी अल्लाह ताला ने कैसी कदरदानी की, रहती दुनिया तक उनके इस काम को अल्लाह ताला ने प्रिजर्व भी किया, उनके नाम को जिंदा भी रखा और दुनिया उनका जिक्र खैर ही करती रही। कहीं वो भी वहां पे बोर्ड लगा देते जरा। हमें बहुत शौक होता है ना कि हम मस्जिद में जरा सी ईंट भी लगवा दिए तो मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ पे मेरी तख्ती लगवा दो, यहाँ पे लोगों को पता चल जाए कि मैंने किया, नीचे अपना नाम लिखो, इस पे अपना नाम लिखो। इतना मैं मजबूर हो जाती हूँ, ये फ्लायर जब शुरू के अंदर बनते थे, मुझे लोगों को पता है जो मेरे साथ काम करते थे, मैं कहती थी मेरा नाम ना लिखे इसके ऊपर, मजबूरी होती है वरना दिल नहीं चाहता कि इसके ऊपर भी नाम लिखे जाए, क्योंकि ये नाम देखे ना इंसान के अंदर एक अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक बड़ाई का एहसास है जी मेरा नाम देखो लिखा जा रहा है। हम उन्होंने कहा नहीं जी आप मजबूरी है, लोगों को बताना होता है कि कौन स्पीकर है इसलिए नाम लिखना पड़ता है। लेकिन देखिए जो बड़े लोग होते हैं वो कहीं अपने नामों के चर्चे पसंद नहीं करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो देखे सुभान अल्लाह, वो चींटी जो बोल ली, उसने कहा चींटी अपने बिल में चले जाओ कहीं सुलेमान की आर्मी तुम्हें क्रश ना कर दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, देखो मेरी मेरी देख मैं तो इनकी जुबान भी समझ सकता हूँ, देखो चींटियां भी मेरे से डर के भाग रही, नहीं रब्बी औज़ेनी अना अशकुरु नेमतक अल्लती अन'अमता अलैया वअला वालिदैया। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नियमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मेरे ऊपर की और मेरे वालदैन पर। जो भी काम करते हैं और चाहे चाहे छोटा भी काम हो, किसी को खाना खिलाने का भी काम हो, सूरह दहर में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि वो लोगों को खाना खिलाते हैं, वो कहते हैं ला नुरी तुम इनकुम जजा अम वला शुकूरा, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, ना कोई बदला ना कोई शुक्रिया कि तुम हमें थैंक यू भी बोलो, जजाकल्ला खैरन भी बोलो, हमें कोई दुआ ही दे दो, इस ये भी नहीं हम चाहते। हम तो फौरन देखते हैं उसके बाद देखते हैं अच्छा इसने थैंक यू नहीं बोला मुझे, अच्छा इसका मैसेज नहीं आया, मैंने दावत पे बुलाया था इनको खाना खिलाया था, मैसेज नहीं इन्होंने किया कि भाई थैंक यू आपने खाना खिलाया, मैंने इसको ये गिफ्ट दिया था इसने थैंक यू क्यों नहीं बोला, अब हमने तो कुछ देना ही नहीं है, उसके बाद तो कोई थैंक यू का भी नहीं नोट आता, कभी इन्होंने कभी माना ही नहीं कि मैंने इनको कोई गिफ्ट दिया, हम तो इतनी हद तक देखते हैं। लेकिन जो लोग खालिस होते हैं ना अल्लाह के लिए, तो देखें फिर इखलास से कितना फर्क पड़ता है कि वो पीछे मुड़ के ही नहीं देखते कि शुक्रिया किसी ने किया या नहीं किया, किसी ने क्या कहा और किसने मेरी तारीफ की कि नहीं की, और मेरा बोर्ड यहां पे लगा कि नहीं लगा, इन्होंने मुझे कुछ माना कि नहीं माना। बढ़ बढ़ के हम बताते हैं ये मैंने ही शुरू किया था, ये मेरा ही था, ये मैंने ही बनवाई है, भूल ना आप जाए ताकि आप कहीं अगर आपको भूल गया हो तो मैं याद दहानी करा देती हूँ कि ये मैंने ही शुरू तो मैंने ही किया था। अल्लाह अकबर, मैं आज यही, आज आप आगे भी देखेंगे इस सूरत के अंदर भी जिस चीज से डर रही हूँ कि ये अल्लाह पता नहीं हमारी तो कोई नेकी रह भी गई है हमालनामे में कि नहीं, कि हम तो ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि हम कितनी दफा अपनी बढ़ाइयों के एहसास में हम इतने गुम है कि हम कितनी दफा ऐसी बातें भूल जाते हैं, कितनी दफा ऐसी चीजें कह जाते हैं, पता नहीं है कि कुछ रहा भी है कि नहीं रहा। हाँ, काला हादा रहमतुम मेरे रब्बी फइजा जा अवादु रब्बी, फिर जब आ जाएगा मेरे रब के वादे का वक्त, यानी कयामत का वक्त करीब आ जाएगा, जा लहू दक्का, तो मेरा रब इसको रेजा रेजा कर देगा, यानी जो इतनी चाहे जितनी भी अपनी तरफ से मजबूत बना ले, लेकिन उसका तो एक ही हुक्म आना है तो ये क्रम्बल हो जाएगी, पीसेस में हो जाएगी। जा दुक्का दिल अर्दु दक्कन, दक्का आया ना वहां पे, दक्क के अंदर ही आपको कितनी शिद्दत महसूस होती है ना, कि इसके अंदर ही पता चलता है कि यानी बिल्कुल रेजा रेजा कर देगा इसको। वकाना वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच है, इससे उसका ईमान पता चलता है सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ ही इस कारनामे को भी अल्लाह ही की तरफ उसने यानी वापस किया, अल्लाह ताला से ही मंसूब किया। और फिर आगे भी ये नहीं कहा मैंने ये ऐसी मजबूत दीवार बनाई है कोई माई का लाल इसको गिरा के दिखाए, जब कोई बड़ा कारनामा करता है इस तरह की बातें करते हैं ना, देखिए ना बड़ी चीजें जब कोई करता है तो फिर ऐसी बातें मुंह से निकलती ही हैं। वो कहता है, ये नहीं कहता कि कोई आके गिरा के दिखाए कोई का, वो कहता है जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा, अब इससे भी उसके इल्म का पता चलता है, जब इल्म आता है तो आजी आती है, यहां से ये पता चला ना पिछली हमने किस्से में भी क्या देखा था, इल्म आता है तो आजी आनी चाहिए, अब ये आजी है उसकी, और उसको पता है कि रब का वादा है एक दिन कि सब खत्म हो जाना है, तो ये दीवार भी गिर जाएगी उस वक्त। अब एक तरीका था कहने का कौन इसको गिरा के दिखाए, कोई हो नहीं सकता जो इसको गिरा के दिखाए, कोई हो नहीं सकता जो इसको खत्म करके दिखाए, और दूसरा तरीका क्या, ये पता चलता है कि कितनी मजबूत होगी वो दीवार, कि उसने कहा कि जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो रेजा रेजा हो जाएगी, यानी अल्लाह ताला की पावर है, अल्लाह की कुदरत को भी जानता था। वकाना वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा तो सच्चा ही है। अब देख लेना, देखे उसने अपने रिसोर्सेज को इंसानियत की खिदमत में लगाया, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसको दूर करने में लगाया, सिर्फ अपनी शोशा और अपने आराम के लिए नहीं किया। अब असबाब हमारे पास भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उनको किस में लगाते हैं, क्या कभी हमारे कोई रिसोर्सेज यूज होते हैं कि किसी की परेशानी दूर हो जाए, कोई मुश्किल के अंदर है, कोई मुसीबत में है, वो हमारा कुछ भी नहीं लगता, वो हमारे हमारे काम भी नहीं आ सकता दोबारा, हमने शायद उसको कभी दोबारा मिलना भी नहीं है, जैसे जुल्करनैन ने बार बार थोड़ी इनके पास आते रहना, लेकिन क्या फिर हमारे मादी वसाइल या हमारे इल्मी वसाइल या हमारे पास जो भी काबिलियत है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में, क्या वो दूसरों के लिए यूज होती है कि उनको कंफर्ट मिल जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما لنتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا.